नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में स्टार्टअप इंडिया पहल के एक दशक पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर स्टार्टअप प्रतिनिधि अपने उद्यमशीलता के सफर से जुड़े अनुभव भी साझा करेंगे।
स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत आज ही के दिन वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य नवाचार को प्रोत्साहित करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और निवेश आधारित विकास को सक्षम बनाना था। पिछले एक दशक में भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में अभूतपूर्व विस्तार देखने को मिला है, जिसमें देश भर में 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा चुकी है। भारत 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने और विकसित भारत 2047 के व्यापक दृष्टिकोण की ओर अग्रसर है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह अवसर उन युवाओं के साहस, नवाचार और उद्यमशीलता की भावना का जश्न मनाता है, जिन्होंने वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की स्थिति को मजबूत किया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के स्टार्टअप तंत्र ने पिछले एक दशक में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जो नवाचार, दृढ़ता और वैश्विक मान्यता की यात्रा को दर्शाती है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर उद्यमियों, नवोन्मेषकों तथा उद्योग प्रमुखों को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने भारत की स्टार्टअप यात्रा को सफलता और वृद्धि की अतुलनीय गाथा बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश आकांक्षा और सृजन में विश्वास रखता है और युवा पीढ़ी वो सब कुछ बना रही है जिसकी कभी तलाश की जाती थी। श्री मोदी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के लेख को साझा किया। उन्होंने कहा कि इस लेख में देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम की विशेषता बताई गई है, जो समावेशी परिवेश में नए उद्यमियों को विकसित होने में मदद कर रहा है और एक विकसित भारत के लिए अनगिनत अवसरों पर विचार करने का अवसर प्रदान कर रहा है। सरकार आगामी बजट सत्र में बीज अधिनियम 2026 पेश करेगी। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कानून का उद्देश्य खराब गुणवत्ता वाले, नकली और अनधिकृत बीजों की बिक्री पर अंकुश लगाना है। उन्होंने कहा कि नया कानून जानकारी की सुविधा भी प्रदान करेगा।
इसमें ट्रेसेबिलिटी का पूरा एक सिस्टम होगा। जो बीज आएंगे वो ये पता चलेगा कि डीलर के पास कहां से आए। एक तो ये होगा कि खराब बीज सिस्टम में आएंगे ही नहीं, और आए तो वो पकड़े जाएंगे और जिसने दिए उसको दंड दिया जा सकेगा, इसकी व्यवस्था की गई है। सीड कंपनी का रजिस्ट्रेशन बाकायदा किया जाएगा। इससे अनाधिकृत रूप से अगर कोई बीज बेचेगा तो वो भी जानकारी तत्काल प्राप्त की जा सकेगी। हाँ, एक बात मैं इसमें कहता हूं कि परंपरागत बीज जो किसान बोता चला आया है पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे, क्योंकि किसान आपस में भी बीजों का विनिमय करता है।
गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मकर संक्रांति किसानों का त्यौहार है और एक तरह से ये लोग ही इस दिन अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। नई दिल्ली में तीसरे अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि देश के लोग हर मौसम में त्यौहार मनाते हैं। उन्होंने कहा कि इन त्यौहारों के माध्यम से संपूर्ण समाज साथ आता है। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के काकोरा गांव में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी और तलाश अभियान के दौरान एक आईईडी को निष्क्रिय कर दिया। अभियान के दौरान इलाके से एक बैग में लगभग 3.5 किलोग्राम वजन का एक आईईडी बरामद किया गया था। ये इस क्षेत्र में किसी भी खतरे को बेअसर करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चल रहे सुरक्षा उपायों का हिस्सा था। सुरक्षा बल उच्च सतर्कता अभियान जारी रखते हुए क्षेत्र की निगरानी कर रहे हैं। इसराइल की राजधानी तेल अवीव स्थित भारतीय दूतावास ने क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों को इसराइल की अनावश्यक यात्राओं से बचने की सलाह दी है। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में आज दिल्ली में लक्ष्य सेन का सामना चीन के लिन चुन यी से होगा। इससे पहले खेले गए मैच में लक्ष्य सेन ने जापान के केंटा निशिमोतो को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।